47 अध्याय 32 निष्कर्ष। जैसा कि हम व्यवस्था विवरण अध्याय 32 के मूसा के इस गीत में आगे बढ़ाते हैं, मैं पिछले सप्ताह की तरह ही कुछ दिव्य सिद्धांतों का सारांश प्रस्तुत करना चाहता हूं जो उत्पत्ति की पुस्तक के बाद से प्रगति पर है। ये सिद्धांत मूसा के गीत के काव्यात्मक शब्दों में घोषित और भविष्यवाणी की जा रही बातों में सबसे आगे हैं। मैंने पहले भी उस गोंद के बारे में बात की है जो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर के वचन को एक साथ बांधे रखता है, और वह गोंद परमेश्वर की न्याय प्रणाली है। इब्रानी में न्याय को मिशपत कहते हैं। मैंने कई मौकों पर आपको बताया है कि यीशु ने एक खास उद्देश्य के लिए ईश्वर की न्याय व्यवस्था को संतुष्ट किया, और यह मानव जाति के उद्धार के इतिहास की समग्र प्रक्रिया, एक प्रक्रिया जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, को बनाने वाले कई चरणों में से एक था। संतुष्ट शब्द का अर्थ समाप्त नहीं है और न ही इसका अर्थ समाप्त है। अगर कोई बैंक लूटता है और बाद में उसे गिरफ्तार किया जाता है, निष्पक्ष सुनवाई की जाती है, दोषी ठहराया जाता है और जेल भेजा जाता है, तो कहा जाता है कि हमारी अमेरिकी न्याय व्यवस्था संतुष्ट हो गई है। जाहिर है कि दोषी ठहराए गए अपराधी के जेल जाने से आखिरकार हमारी न्याय व्यवस्था खत्म हो गई, क्योंकि न्याय व्यवस्था उसके अपराध की पुष्टि और उसके उचित दंड की घोषणा के बाद संतुष्ट हो गई। बल्कि हमारी न्याय व्यवस्था का उद्देश्य और लक्ष्य, व्यवस्था की संतुष्टि न्याय प्रक्रिया द्वारा अपने इच्छित परिणाम को प्राप्त करने के द्वारा लाया गया था। मैं आपको यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज के कई मुख्यधारा के चर्च सिद्धांत जोर शोर से घोषणा करते हैं कि क्रूस पर मसीह के दुख के कारण सार्वभौमिक प्रेम और क्षमा के पक्ष में ईश्वर की न्याय प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। इस प्रकार एक आस्तिक सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए कोई भी गलत काम नहीं कर सकता है जिसके लिए ईश्वर के अनुशासन की आवश्यकता हो, क्योंकि ईश्वर अब न्याय नहीं केवल दया प्रदान करता है। इस गलत सिद्धांत को संबोधित करने के लिए हमें प्रकाशित वाक्य 15 में ले गया, जहां हम उन अध्यायों के बीच में थे जो महान क्लेश के अंतिम दिनों या शायद तुरंत बाद के दौरान दुनिया और उसके लोगों पर ईश्वर के क्रोध को उंडेलने का चित्रण करते हैं। और उन पदों में हमने पाया कि जो लोग ईश्वर के प्रति वफादार थे, वे मूसा के इसी गीत को गा रहे थे जिसे हम एक विजय गीत और अपने लोगों, अपने अमीम के लिए न्याय के ईश्वर के वादे की याद के रूप में पढ़ रहे हैं। मैं प्रस्तुत करता हूं कि इस गीत के लिए एक अच्छा वैकल्पिक शीर्षक यहोवा के न्याय की स्तुति होगा, क्योंकि इसमें हम न्याय के सिक्के के दोनों पहलुओं को देखते हैं, परमेश्वर की दया और कठोरता, उसका उद्धार और विनाश, प्रभु का आशीर्वाद और श्राप तथा हमारा पुरस्कार और दंड। ईश्वर की न्याय व्यवस्था तब समाप्त नहीं हुई जब हमने एजरा की पुस्तक, जो पुराने नियम को समाप्त करती है, से मत्ती की पुस्तक, जो नए नियम को शुरू करती है, की ओर पृष्ठ पलटा। न ही ईश्वर की न्याय व्यवस्था कलवरी पर समाप्त हुई। वास्तव में हमें नए नियम में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सभी मनुष्यों, जिनमें विश्वासी भी शामिल हैं, का अंततः न्याय किया जाएगा। पहला पत्रस को सुने, सीजे भी पहला पत्रस 4:14, यदि तुम मसीह के नाम को धारण करने के कारण अपमानित हो रहे हो तो तुम धन्य हो, क्योंकि शिखिनाह की आत्मा अर्थात परमेश्वर की आत्मा तुम पर विश्राम कर रही है। 15, तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी या दूसरों के मामलों में दखल देने के कारण दुख न पाए। 16, परंतु यदि कोई मसीह होने के कारण दुख उठाए तो लज्जित न हो, परंतु अपने इस नाम को धारण करने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। 17, क्योंकि न्याय के आरंभ का समय आ पहुंचा है। यह परमेश्वर के घराने से आरंभ होता है, और यदि यह हमसे आरंभ होता है तो उन लोगों का क्या परिणाम होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार की अवज्ञा कर रहे हैं। 18, यदि धर्मी को कठिनाई से छुड़ाया जाए तो अधर्मी और पापी का अंत कहां होगा।
यहां तक कि परमेश्वर का घराना जो मसीह को स्वीकार करते हैं, कलीसिया भी न्याय के लिए परमेश्वर के सामने खड़ा होगा। लेकिन किस आधार पर हमारा न्याय किया जाएगा? हमें अपने सृष्टिकर्ता के सामने अपने जीवन के लिए किस मानक से जवाब देना होगा। खैर, यह इस बात पर आधारित नहीं होगा कि हम यीशु पर भरोसा करते हैं या नहीं, क्योंकि परिभाषा के अनुसार परमेश्वर का परिवार जिसके बारे में पत्रस ने बात की है वह विश्वासी है। इसके बजाय विश्वासियों का न्याय परमेश्वर की लंबे समय से स्थापित न्याय प्रणाली तोरह के नियमों और आदेशों के आधार पर किया जाएगा, जिसे उन्होंने माउंट सिनाई पर निर्धारित किया था। अब उस न्याय के परिणाम हमारे लिए उन लोगों से बिल्कुल अलग होंगे जो विश्वासी नहीं हैं। वे सभी जो विश्वास नहीं करते हैं अनंत विनाश को झेलेंगे। कोई भी विश्वासी विनाश को नहीं झेलेगा। इसके बजाय हम विश्वासियों के लिए हमारे जीवन को खोला जाएगा, हमारे कर्म या कर्मों की कमी को उजागर किया जाएगा, हमारे जीवन के फल हमारे प्रभु द्वारा गिने जाएंगे और हम में से कम धार्मिक कर्म करेंगे और कम फल देंगे उन्हें सबसे कम पुरस्कार दिया जाएगा, और हम में से जो बहुत से धार्मिक कर्मों को पूरा करेंगे और बहुत अधिक फल देंगे उन्हें सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। समझें कि जो भी फल पैदा हो सकता है वह परमेश्वर की आज्ञाकारिता का परिणाम है। प्रभु की आज्ञाओं की अवज्ञा करके कोई अच्छा फल नहीं पैदा करता। इसलिए हमारे कर्म और हमारे फल किसी तरह से आज्ञाकारिता और प्रेम का माप है, जिसका उपयोग यहोवा द्वारा हम उसके लोगों का न्याय करने के लिए किया जाएगा। फल हमारे बैंक खातों के आकार या हमारे परिवारों या हमारी मंडली के आकार से नहीं मापा जाता है, बल्कि यह हमारे जीवन का वह हिस्सा है जिसने पवित्र आत्मा के निर्देश पर परमेश्वर के राज्य के लिए स्थायी अच्छाई पैदा की है। लेकिन न्याय शब्द का वास्तव में क्या अर्थ है, यह समझने के लिए हमें इसकी जांच करने की आवश्यकता है। न्याय का अर्थ हमारे समय में हमेशा नकारात्मक ही माना जाता है। न्याय को कम से कम यहूदी ईसाई धर्म में क्रोध या दंड के समानार्थी के रूप में देखा जाता है, और ऐसा नहीं है।
इसीलिए जब हम सुनते हैं कि दुनिया का न्याय किया जाएगा तो हम आमतौर पर मान लेते हैं कि इसका मतलब है कि दुनिया अपने आप ही ईश्वर के क्रोध को झेलेगी। इसके अलावा जब हम सुनते हैं कि विश्वासियों का न्याय किया जाएगा तो हम घबरा जाते हैं, या हम किसी तरह की रूपकात्मक माफी के साथ यह कहने लगते हैं कि बाइबल वास्तव में ऐसा नहीं कहती है, क्योंकि हमें जो कुछ हो रहा है उसके बारे में कुछ अजीब मानसिक चित्र मिल सकते हैं जब हम अपनी बाइबल में न्याय शब्द पढ़ते हैं। दिलचस्प बात यह है कि न्याय के लिए इब्रानी शब्द मिशपत का अनुवाद निर्णय के रूप में भी किया जा सकता है। न्याय और निर्णय मूल रूप से एक ही चीज है, और बाइबल का विचार यह है कि एक व्यक्ति को व्यवस्था बनाने वाले के सामने जांच के लिए रखा जाता है और फिर फैसला सुनाया जाता है। मिशपत शब्द में अपराध की कोई धारणा नहीं है। इसलिए जब एक आस्तिक न्याय के लिए परमेश्वर के सामने खड़ा होता है तो हम पहले से ही फैसले का हिस्सा जानते हैं। हम जो उस पर भरोसा करते हैं हमें निर्दोष घोषित किया जाएगा क्रूस पर यीशुआ के कार्य के कारण। एक आस्तिक के लिए फैसले का शेष भाग केवल यह है कि उसे अनंत जीवन से परे किस स्तर का या शायद अनुपस्थिति इनाम मिलेगा, लेकिन उस फैसले के साथ शायद दुख की एक झलक भी होगी, क्योंकि हम सभी अपने सामने आज्ञाकारी और वफादार होने में अपनी असफलताओं को भी देखेंगे और इसके कारण होने वाले भयानक परिणाम। इसलिए जैसे जैसे हम मूसा के गीत का अध्ययन जारी रखते, जिस तरह से उनका इरादा था, क्योंकि जैसा है मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे हम न्याय और न्याय जैसे शब्दों के संपर्क में आएंगे हम उन्हें अधिक तटस्थ तरीके से, कि हम जल्द ही देखेंगे कि न्याय की उचित परिभाषा बाइबल के उन अंशों को भी बहुत प्रभावित करती है जो एक और इस्तेमाल किए जाने वाले अंग्रेजी शब्द प्रतिशोध का इस्तेमाल करते हैं। आइए मूसा के गीत के बचे हुए शब्दों को फिर से पढ़ें। अपनी बाइबल में व्यवस्था विवरण 32 खोलें।
व्यवस्था विवरण 32 का 30 से 43 को पुनः पढ़ें।
इस धार्मिक कविता में पहले विषय अतीत, इज़राइल का अतीत था। पद 30 से शुरू होकर समय संदर्भ भविष्य की ओर बढ़ना शुरू करता है, और प्रभु एक अलंकारिक प्रश्न उठाते हैं कि यह कैसे संभव है कि एक योद्धा 1,000 विरोधियों को भगा सकता है
और 10 योद्धा 10,000 विरोधियों को हरा सकते हैं। दूसरे शब्दों में एक छोटी दुश्मन सेना कैसे मजबूत और अधिक संख्या वाले इसराइलियों उनके महान ईश्वर के साथ को हरा सकती है जब तक कि इसराइलियों के अपने ईश्वर ने उन्हें उस दुश्मन के हवाले न कर दिया हो। बेशक अपेक्षित उत्तर यह है कि यह किसी अन्य तरीके से नहीं हो सकता है, इसलिए यह कुछ ऐसा है जिसे न केवल इसराइल को समझना चाहिए बल्कि इसराइल के विजेताओं को भी पहचानना चाहिए ताकि वे अपनी सामूहिक पीठ न थपथपाएं या इसराइल के खिलाफ अपनी सैन्य सफलता के लिए अपने निम्न देवताओं को श्रेय न दें।
फिर भी भले ही प्रभु अपने लोगों को ईश्वरीय दंड के रूप में कुचलने के लिए इसराइल के शत्रुओं का उपयोग करेंगे, लेकिन प्रभु इसका उपयोग उद्धार के लिए भी करेंगे। और क्योंकि शत्रु घमंड और डींग मारेंगे और इसराइल के साथ कठोर व्यवहार करेंगे, इसलिए प्रभु अपना क्रोध इसराइल से हटाकर शत्रु की ओर मोड़ देंगे। वादा किए गए देश के अंगूर, जो कभी इसराइल के लिए इतनी बढ़िया शराब और खुशी पैदा करते थे, शत्रु के लिए जहर और करवाहट के समान होंगे, क्योंकि वे उस चीज का आनंद लेने की कोशिश करेंगे जो विशेष रूप से परमेश्वर के लोगों के लिए अलग रखी गई थी। हमें पद 34 में बताया गया है कि प्रभु ने शत्रु के लिए नियत इस जहरीली शराब को संग्रहित कर लिया है और यह पिता के अपने भंडार में मुहरबंद कर दिया गया है। स्वाभाविक रूप से जहरीली शराब प्रतीकात्मक है और यह उस सज्जा का रूपक है जो इसराइल के उत्पीड़कों को दी जाएगी।
ये पद यह स्पष्ट कर रही हैं कि क यह परिदृश्य घटित होगा और ख परिणाम वैसा ही होगा जैसा कि भविष्यवाणी की गई है। इसके अलावा ग प्रभु ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है, जिसका अर्थ है कि यह निश्चित है और केवल उसके पास ही अपने क्रोध के एजेंट जहरीले अंगूरों का रूपक तक पहुंच है जिसे दुश्मन पर तैनात किया जाएगा।
इस युग के लोगों के लिए गोदाम को उसके मालिक द्वारा सील किए जाने की कल्पना एक परिचित बात थी। जमींदार या राजा की यह प्रथा थी कि वह अपने भंडारण सुविधाओं की कुंडी को मिट्टी या मोम से सील कर देता था जिस पर उसकी मुहर लगी होती थी। जाहिर है कि ऐसी मुहर किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एक सूचना के रूप में कार्य करती है जो अंदर जाना चाहता है कि सामान किसी विशेष शक्तिशाली व्यक्ति का है, इसलिए यह अनाधिकृत लोगों के लिए दूर रहने की चेतावनी है। लेकिन मुहर स्वामित्व का एक चिन्ह भी है जो यह पहचानता है कि कौन शक्तिशाली व्यक्ति है जिसका संग्रहित सामान पर एकमात्र अधिकार है।
पुराने और नए नियम दोनों में ही कई जगह हैं जो प्रभु द्वारा किसी चीज को सील किए जाने की बात करती हैं। इसलिए विचार यह है कि भविष्य की घटना के रूप में घोषित की गई कोई चीज एक तयशुदा सौदा है और इसे कोई भी नहीं बदल सकता है, और केवल प्रभु ही इसके अनावरण का समय और परिस्थिति तय कर सकते हैं। इसलिए पद 35 में विचार जारी है कि प्रभु द्वारा चुने गए क्षण में वह अपने व्यक्तिगत भंडार को खोल देगा जो संग्रहित क्रोध से भरा है, और इसे उन लोगों पर खाली कर देगा जो इसके लायक हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी प्रतिशोध और प्रतिफल केवल उसके और केवल उसके हैं। तो यहां हम प्रतिशोध शब्द का सामना करते हैं जिसका मैंने उल्लेख किया था कि यह न्याय और निर्णय से जुड़ा हुआ था। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि प्रतिशोध मूल इब्रानी शब्द नाकाह का अनुवाद करने के लिए शब्दों का एक खराब विकल्प है। यह इस मार्ग से है कि हमें प्रसिद्ध ईसाई वाक्यांश प्रभु कहता है प्रतिशोध मेरा है मिलता है। प्रतिशोध का अर्थ निश्चित रूप से किसी से बहुत क्रोध के साथ बदला लेना है। तुमने मुझे नाराज किया है, इसलिए अब मैं तुम्हें सजा दूंगा।
इस अनुच्छेद का संदर्भ आम तौर पर इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि परमेश्वर की न्याय प्रणाली के अंतर्गत दुष्ट शत्रु जिसने उसके लोगों इसराइल को हानि पहुंचाई है, वह परमेश्वर के अधीन हो जाएगा जो उसके बुरे तरीकों के लिए प्रतिफल देगा, एक प्रकार से आंख के बदले आंख का प्रतिशोध, और ऐसा करना उसका एकमात्र अधिकार है। लेकिन यह बात छूट जाती है, नाकाह में बदला लेने से अलग अर्थ निहित है। बदला लेना एक सामान्य तरीका था जिससे एक प्राचीन मध्य पूर्वी परिवार किसी ऐसे व्यक्ति से निपटता था जिसने परिवार के किसी सदस्य का अपमान किया हो या उसे नुकसान पहुंचाया हो। बदला लेने की अवधारणा कबीलाइता और मूर्तिपूज की पर आधारित थी और यह रक्त विवाद का स्वाभाविक परिणाम है। प्राचीन रीति रिवाज के अनुसार एक परिवार को उस व्यक्ति के पीछे जाना आवश्यक था जिसने उनका अपमान किया हो, अन्यथा वे और भी अधिक सम्मान खो देंगे। याकूब के बेटों शिमोन की कहानी में और लेवी जिसने असहाय शहर शेखेम पर जानलेवा हमला किया, यह हमला शेखेम के राजा के बेटे द्वारा दीना के साथ बलात्कार करके याकूब के परिवार का अपमान करने का बदला लेने के उद्देश्य से किया गया था। याकूब ने न केवल अपने बेटों को इस अन्यायपूर्ण बदला लेने के लिए तुरंत दोषी ठहराया, बल्कि अपनी मृत्यु शैया पर दशकों बाद उसने शिमोन और लेवी को आशीर्वाद देने के बजाय श्राप दिया। इससे यह प्रदर्शित हुआ कि परमेश्वर का चरित्र बदला लेने को स्वीकार नहीं करता। वादा किए गए देश में शरण के शहरों की स्थापना ने उन लोगों के लिए एक सुरक्षित आश्रय भी प्रदान किया जो अन्यथा बदला लेने के शिकार हो सकते थे। मध्य पूर्व में आज हम जो हिंसा का कभी ना खत्म होने वाला चक्र देखते हैं, वह परिवारों, गोत्रों और धार्मिक संप्रदायों के बीच बदला लेने और खून के झगड़े के बारे में है। मसीह में हमारे अरब भाई टैस कई साल पहले, जब वह अभी भी एक मुस्लिम थे, खून के झगड़े के कारण वेस्ट बैंक से अमेरिका भाग गए थे, जो निश्चित रूप से अंततः उनके जीवन का दावा करता। इसलिए नकाह का अर्थ प्रतिशोध के बजाय मेंडेनहॉल कहते हैं कि इसका अर्थ है अपने स्वयं के विषयों की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च वैध प्राधिकारी द्वारा शक्ति का कार्यकारी प्रयोग। दूसरे शब्दों में की गई कार्रवाई का उद्देश्य रक्षा करना है, न कि अपराध करना। ईश्वर इन विपत्तियों, जहरीली शराब से भरा भंडार को इज़राइल के विजेताओं पर डाल देगा, ताकि वे इज़राइल को नुकसान पहुंचाना बंद कर दें और उन्हें छोड़ दें, और इस प्रकार इज़राइल बच जाएगा और मिट नहीं जाएगा। इसका अर्थ है दुष्ट व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करना, ताकि वह राजा के नागरिकों में से किसी को और नुकसान न पहुंचाए। मुद्दा हमलावर से सुरक्षा और आत्मरक्षा का है, अपराधी से बदला लेने का नहीं। इसका बड़ा उद्देश्य दुश्मन को दंडित करने के बजाय नागरिकों को लाभ पहुंचाना है, हालांकि दंड निश्चित रूप से एक भूमिका निभाता है। इसलिए शायद हमें उस वाक्यांश के इस्तेमाल पर पुनर्विचार करने की जरूरत है जिसे हम एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। प्रभु कहता है कि प्रतिशोध मेरा काम है, क्योंकि वास्तव में प्रभु यह नहीं कह रहे हैं कि वे बदला लेते हैं, बल्कि यह उनका विशेषाधिकार है कि वे अपने लोगों को उन लोगों से बचाने के लिए जो उनके नहीं हैं, जो भी जरूरी समझें, वे कार्रवाई करें।
आइए इसी अवधारणा को ईश्वर की न्याय प्रणाली पर भी लागू करें। ईश्वर का न्याय यह है कि वह दुष्टों से अपने लोगों की रक्षा करने के लिए कुछ भी करेगा। दुष्टों को नष्ट करने से उसे कोई खुशी नहीं मिलती। उसने जो न्याय प्रणाली स्थापित की है, वह उन लोगों की रक्षा करने पर आधारित है जो प्रभु पर भरोसा करते हैं, भले ही इसका मतलब दूसरों को नुकसान पहुंचाना या अंततः नष्ट करना हो, जिन्हें वह प्यार कर सकता है। सभी लोग उसकी रचनाएं हैं, लेकिन उन्होंने उसके लोगों का हिस्सा नहीं बनना चुना है, और इसीलिए वे उसके लोगों के लिए खतरा हो सकते हैं। जैसे प्रभु शत्रु पर न्याय करेगा, वैसे ही वह अपने लोगों पर भी न्याय करेगा, लेकिन निर्णय और परिणाम बिल्कुल अलग होंगे। यहां पर मिशपात, न्याय और निर्णय पर हमारी पिछली चर्चा फिर से लागू होती है। पद 36 में हमें एक नए शब्द से परिचित कराया गया है, जो ईश्वर की न्याय प्रणाली की प्रक्रिया का हिस्सा है, दीन, और इसका अर्थ है न्याय करना, या इसका अर्थ हो सकता है किसी मामले की पैरवी करना। इसका अर्थ ईश्वर द्वारा दंड बरसाने के अर्थ में न्याय करना नहीं है। न्याय के लिए सामान्य लेकिन गलत अर्थ, इसका अर्थ है निर्णय लेना, किसी मामले पर निर्णय लेना कि निर्णय पक्ष में है या विपक्ष में। यहां इसका प्रयोग इज़राइल के संबंध में किया गया है, परंतु यह वही शब्द है जिसका प्रयोग शत्रु का न्याय करने के लिए किया जाता है। जब कोई आरोपी व्यक्ति न्यायाधीश के सामने खड़ा होता है, तो उसे सबूतों के आधार पर दोषी या निर्दोष घोषित किया जा सकता है।
इसलिए जब परमेश्वर के शत्रु का न्याय परमेश्वर की न्याय प्रणाली के अनुसार किया जाता है और उसे दोषी पाया जाता है तो उसे सजा मिलती है। जब परमेश्वर के लोगों का न्याय परमेश्वर की न्याय प्रणाली के अनुसार किया जाता है और उसे निर्दोष पाया जाता है तो उसे सुरक्षा मिलती है। इस प्रकार सीजेबी के पास यहाँ जो हो रहा है उसका सबसे अच्छा वर्णन करने के लिए बेहतरीन शब्द हैं, परमेश्वर अपने लोगों का न्याय करेगा, अपने सेवकों पर दया करेगा, परमेश्वर अपने लोगों के खिलाफ मामले पर विचार करेगा और न्याय करेगा, अर्थात वह निर्धारित करेगा कि वह उन पर दया करेगा। परमेश्वर इसराइल के शत्रु के खिलाफ मामले पर विचार करेगा और न्याय करेगा, वह निर्धारित करेगा कि वह अपने लोगों की रक्षा करने के लिए उन्हें नुकसान पहुंचाएगा। आइए हम अपने संदर्भ को फिर से स्थापित करें। परमेश्वर कहता है कि इसराइल उसे त्याग देगा, इसलिए वह उन्हें एक शत्रु के माध्यम से दंडित करेगा जो इसराइल पर विजय प्राप्त करेगा और उन्हें वादा किए गए देश से निर्वासित कर देगा। लेकिन किसी समय प्रभु देखेगा कि दंड ने अपेक्षित परिणाम प्राप्त कर लिया है और जल्द ही उसके लोग पश्चाताप करने और उसके पास लौटने और अपने उद्धार को पुनः प्राप्त करने के लिए तैयार होंगे। इसलिए वह अपने लोगों को दंड देना बंद कर देता है और इसके बजाय इज़राइल के ईश्वरीय आदेशित दंड को समाप्त करने के साधन के रूप में उस क्रोध को शत्रु की ओर मोड़ देता है। परमेश्वर यह कैसे तय करेगा कि इज़राइल के विरुद्ध अपनी अनुशासनात्मक कार्रवाई को बंद करके उसे शत्रु की ओर मोड़ना कब है? पद 36 आगे कहता है, जब वह परमेश्वर देखेगा कि उनकी इज़राइल की शक्ति चली गई है और कोई भी दास या स्वतंत्र नहीं बचा है। जाहिर है कि इज़राइल के लिए और कोई भी नहीं बचा है। वाक्यांश का शाब्दिक अर्थ यह नहीं हो सकता कि हर आखिरी इसराइली चला गया है या इसराइल विलुप्त हो जाएगा और बचाने के लिए कोई नहीं बचेगा। इसके बजाय यह शब्द एक और इब्रानी मुहावरा है जिसका कमोबेश मतलब यह है कि इसराइल के जो भी बचे हुए लोग बचे हैं वे अपने अंत तक पहुंच चुके हैं, वे पूरी तरह से असहाय और परमेश्वर पर पूरी तरह से निर्भर होने के बिंदु पर पहुंच चुके हैं। वास्तव में कोई भी दास या स्वतंत्र नहीं बचा है कि सामान्य अनुवाद को चुनौती दी गई है। और अब कई इब्रानी भाषा के विद्वान कहते हैं कि वाक्यांश को इस तरह पढ़ा जाना चाहिए, और कोई भी शासक और सहायक नहीं बचा है। इस प्रकार अभिप्राय यह है कि इसराइल इतना अव्यवस्थित है कि वह नेतृत्व विहीन है। इसके शासक और उनके कर्मचारी जिन्होंने इसराइल को इस दुर्दशा में पहुंचाया था अब मर चुके हैं और चले गए हैं, और इसलिए इसराइल तूफानी समुद्र में एक पतवार विहीन जहाज की तरह चल रहा है। इस प्रकार वे अंततः एक नई और पवित्र पतवार को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, यहोवा उनके परमेश्वर का नेतृत्व।
परंतु यह समझिए कि इसराइल परमेश्वर के छुराए हुए को परमेश्वर ने ही परमेश्वर से दूर निर्वासित कर दिया था, क्योंकि उन्होंने अपनी अवज्ञा और मूर्ति पूजा के द्वारा प्रभावी रूप से परमेश्वर को त्याग दिया था। वे इब्रानी लोग जो उस विदेशी जगह निर्वासन के दौरान में मर गए, उनका उद्धार रद्द हो गया, वे अनंत काल तक परमेश्वर से अलग हो गए। वे भाग्यशाली लोग जो लंबी परीक्षा से गुजरे और उन्होंने अपने तरीकों की गलती देखी, वे अपने उद्धार को नवीनीकृत करने के लिए परमेश्वर की प्रतीक्षा कर रही बाहों में लौट आए। एक तरफ ये उन लोगों का एक अच्छा उदाहरण है जिन्हें हम सभी जानते हैं, जिन्होंने परमेश्वर को स्वीकार नहीं किया और उस स्थिति में मर गए, जबकि दूसरी तरफ वे लोग जो इतने भाग्यशाली थे कि वे बस इतना लंबा समय जी पाए कि आखिरकार अपनी निराशाजनक स्थिति को देख पाए और शायद मृत्यु में अपने अवसर के समाप्त होने से कुछ दिन या घंटे पहले ही परमेश्वर के उद्धार को स्वीकार कर पाए। दूसरी ओर यह भी उस स्थिति के समान है जिसके बारे में हमने पिछले सप्ताह याकूब 5 में बात की थी, जहां मसीह में एक भाई, एक विश्वासी सत्य, अपने स्वयं के उद्धार से भटक गया था और याकूब ने अन्य विश्वासियों से उसके पीछे जाने का आग्रह किया था, क्योंकि यदि वह भटकता हुआ भाई उसी अवस्था में मर जाता तो परमेश्वर से अनंत काल के लिए अलग हो जाने की उसकी नियति निश्चित हो जाती।
पद 37 में परमेश्वर ने व्यंग्यात्मक रूप से कहा है, तो जिन दूसरे देवताओं की तुम पूजा करते थे उनसे तुम्हारा क्या भला हुआ, चूंकि वे तुम्हारे लिए बहुत मायने रखते थे और चूंकि तुमने मेरे प्रति इतना कम सम्मान किया कि तुमने सोचा कि वे तुम्हारे लिए अधिक लाभदायक होंगे, तो क्या हुआ और अब वे देवता कहाँ हैं? वह कौन था जिसने तुम्हारे चढ़ावों की चर्बी खाई और अर्घ्य के चढ़ावों को पिया? दूसरे शब्दों में, जब इज़राइल ने उन कूट देवताओं को बलि चढ़ाना शुरू किया जो बलि यहोवा के लिए होनी चाहिए थी, तो क्या वे देवता शत्रु के निकट आने पर तुम्हें बचाने के लिए प्रकट हुए? वे आपकी ढाल बनने वाले थे और वे असफल रहे। इसीलिए यहोवा कहता है, क्या अब तुम देख सकते हो कि मेरे अलावा कोई ईश्वर नहीं है? मैं ही हूं जिसने तुम्हें मिस्र से छुराया, तुम्हें नया जीवन दिया, तुम्हें वादा किए गए देश में पहुंचाया, और फिर जब तुम मेरे प्रति विश्वासघाती हो गए तो तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के हवाले कर दिया। किसी अन्य देवता के पास तुम्हारे लिए या तुम्हारे विरुद्ध ऐसा कुछ करने का अधिकार या शक्ति नहीं है जैसा कि यहोवा के पास है, और कोई भी अन्य देवता मुझे कभी भी अपने क्रोध को उन पर निकालने से नहीं रोक सकता जिन्हें मैं चुनता हूं। कृपया ध्यान दें, जाहिर है कि परमेश्वर के ये कथन आलंकारिक हैं। परमेश्वर मनुष्यों की तरह सिलसिलेवार ढंग से नहीं सोचता। वह अपने मन में उतार चढ़ाव नहीं पाता और न ही उसकी भावनाएं अस्थिर होती हैं। परमेश्वर के पास कोई चमकती हुई तलवार या उसे उठाने के लिए कोई भौतिक हाथ नहीं है, क्योंकि वह आत्मा है और उसके पास कोई शारीरिक शरीर नहीं है। लेकिन प्रभु इज़राइल और कूट देवताओं के बीच के रिश्ते के बारे में इससे ज्यादा सच कुछ नहीं कहा जा सकता है जो हमने अभी पढ़ा है।
आइए पद 43 पर चलते हैं। सी जे बी में आप जो पढ़ते हैं वह बाइबल अनुवादों के विशाल बहुमत का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि मृत सागर सूची पत्र की खोज और पुनर्निर्माण ने मूसा के गीत के इस अंतिम आह्वान में बहुत अधिक साजिश जोड़ दी है जो राष्ट्रों से आह्वान करता है। याद रखें, परिभाषा के अनुसार हमें मानसिक रूप से राष्ट्रों में गैर यहूदी शब्द जोड़ना होगा कि वे परमेश्वर ने जो किया है उसमें आनंदित हों। CJ.B कई अन्य लोगों की तरह इब्रानी शास्त्रों के मसोरेटिक पाठ का उपयोग अपने पुराना नियम दस्तावेज स्रोत के रूप में करता है। मसोरेटिक पाठ लगभग 900 ईस्वी में बनाया गया था।
सेप्टुआजेंट इब्रानी बाइबल का सबसे पहला ग्रीक अनुवाद ईसा से 2 शताब्दी पहले बनाया गया था, और कुछ बाइबल अनुवाद इसे अपने स्रोत दस्तावेज के रूप में उपयोग करते हैं। बेशक कौन कह सकता है कि मसोरेटिक पाठ और सेप्टुआजेंट के बीच कौन सा स्रोत अधिक सही था? हालांकि अंतर आमतौर पर काफी मामूली है। हमारे लिए सवाल यह है कि किस स्रोत दस्तावेज में पद 43 से शुरू होने वाला उचित शब्द था। खैर, सौभाग्य से डेड सी सूची पत्र ने इस बंधन को तोड़ दिया। डेड सी सूची पत्र लगभग सेप्टुआजेंट के समान ही है, और यहां मृत सागर सूची पत्र मूसा के गीत के अंतिम पदों में क्या कहते हैं, और मुझे आपसे अनुरोध है कि आप ध्यानपूर्वक ध्यान दें।
हे स्वर्ग उसके साथ आनंदित हो,
सभी दिव्य पुत्रों को उन्हें नमन करना चाहिए। हे राष्ट्रों उसके लोगों के साथ आनंद मनाओ,
और ईश्वर के सभी स्वर्गदूत उसमें स्वयं को मजबूत करें।
जो लोग उसका इनकार करते हैं उन्हें बदला दें,
और वह अपने लोगों की भूमि को शुद्ध करेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1000 साल पहले लिखे गए ग्रंथों डेढ़ सी सूची पत्र में मसोरेटिक पाठ की तुलना में काफी अधिक जानकारी है। मसोरेटिक दस्तावेज में ये पद क्यों हटा दी गई है, हमने कुछ हफ्ते पहले इस बारे में बात की थी। हालांकि यह अटकलें हैं, लेकिन यह संभवतः मूल में दिखाई देने वाले बहुत ही समस्याग्रस्त इब्रानी वाक्यांश के कारण था। लेकिन मसोरेट्स ने इसे हटा दिया। सभी बेनेई एलोहिम को नमन करें, ईश्वर के सभी पुत्रों को नमन करें।
मुझे यह बहुत दिलचस्प लगता है कि मूसा के गीत में पदों के तुरंत बाद, जहां प्रभु ईश्वर इज़राइल से यह पूछते हुए बहुत व्यंग्यात्मक है कि उन अन्य देवताओं ने उनके लिए क्या अच्छा किया है, वे देवता जिन्हें वे यहोवा से अधिक पसंद करते हैं, हमें यह बयानबाजी मिलनी चाहिए जो कहती है कि बेनेई एलोहिम ईश्वर के पुत्र दिव्य प्राणी को यहोवा के सामने झुकना चाहिए। संक्षेप में, कई लोग मानते हैं कि यहूदी विद्वान जिन्होंने मसोरेटिक ग्रंथों को लिखा था, वे पवित्र शास्त्र में बेनेई एलोहिम के सभी उल्लेखों को हटाकर विकसित हुई परंपरा का पालन कर रहे थे, क्योंकि यह विचार करना कि अन्य प्राणी भी थे जिन्हें देवताओं के रूप में पूजा जा सकता था, भले ही वे स्पष्ट रूप से देवता नहीं थे और वे यहोवा के नियंत्रण में थे, इज़राइल के लगातार मूर्ति पूजा में गिरने का आधार था। मेरी राय, और मैं राय को रेखांकित करता हूं, यह है कि उत्पत्ति में जिन बेनेई एलोहिम दिव्य प्राणियों के बारे में बताया गया है, पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि ईश्वर ने पृथ्वी पर प्रत्येक राष्ट्र को ईश्वर द्वारा नियुक्त किया था, वे वास्तविक थे और प्रत्येक राष्ट्र पर काफी प्रभावशाली थे। याद करें कि हमने दानियेल की पुस्तक को देखा था, जिसमें इन बेनेई एलोहिम में से एक, जिसे फारस का राजकुमार भी कहा जाता है, ने बेबीलोन में दानियेल के पास आने से ईश्वर के एक दूत को रोक दिया था, और यह केवल मुख्य स्वर्गदूत राजकुमार माइकल था जो आया और फारस के इस आध्यात्मिक राजकुमार से लड़ा, जिसने दानियेल के दूत को उससे मुक्त होने में सक्षम बनाया। एक अन्य आत्मिक प्राणी जिसका ग्रीस पर अधिकार था का भी उसी अंश में उल्लेख किया गया है।
मैं सोचता हूं कि यह संभव है कि सदियों से कम कुछ आध्यात्मिक राजकुमारों ने, जिनका अन्य जाति राष्ट्रों बेनेई एलोहिम पर अधिकार है, देवताओं के रूप में पूजा किए जाने की अनुमति दी और उसका आनंद उठाया। वे देवता नहीं थे, लेकिन उनके पास इतनी भयानक शक्ति और उपस्थिति थी कि यह कल्पना करना आसान है कि जिस राष्ट्र पर उनका प्रभार है, उसके लोग उनके सामने झुकते हैं और उन्हें देवता मानते हैं। आखिरकार, बाइबल में हमारे पास कई घटनाएं हैं जहां ईश्वर का एक दूत प्रकट होता है, और एक गवाह जो सहज कार्य करता है वह है स्वर्गदूत के सामने झुकना और उसकी पूजा करना शुरू करना। स्वर्गदूत तुरंत उस व्यक्ति को ऐसा करने से रोकता है। इसलिए यहां सेप्टुआजेंट और डेड सी सूची पत्र ऑफ ड्यूटेरोनॉमी में मूसा के गीत को समाप्त करने वाले आह्वान में हमें यह निर्देश मिलता है कि स्वर्ग और बेनी एलोहिम और स्वर्गदूत और अन्य जातियों राष्ट्रों को यहोवा के सामने झुकना चाहिए। दूसरे शब्दों में, न केवल इज़राइल बल्कि सभी को प्रभु के अधीन होना चाहिए। मेरे लिए मूसा के गीत के ये अंतिम शब्द संभवतः उन सभी प्रकार के बुद्धिमान प्राणियों का संक्षिप्त सारांश हैं जिन्हें प्रभु ने बनाया है, और एक तरह के विजय उत्सव में प्रभु अपने सभी सृजित प्राणियों, आत्मिक और भौतिक, से कह रहे हैं कि अभी जो कुछ हुआ है, फिर से इज़राइल को बचाना, उसके लिए उचित प्रतिक्रिया यह है कि ये आध्यात्मिक और मानवीय प्राणी आकाशीय क्रम में अपने स्थान को याद रखें और इसलिए अपने निर्माता यहोवा के सामने झुकें, जो हर किसी और हर चीज से ऊपर है। शुरुआत में पद 44 में कविता की एक उपलिपि है। उस युग की प्रथा के अनुसार जब कोई राजा कोई घोषणा करता था तो उसे लिख लिया जाता था, और फिर ऐतिहासिक अभिलेखों से पुष्टि होती थी कि घोषणा को रिकॉर्ड करने वाले ने लोगों के सामने उसी तरह घोषणा प्रस्तुत की है जैसा उसे निर्देश दिया गया था। चूंकि यहोशू इज़राइल का नेतृत्व संभालने की प्रक्रिया में था, इसलिए वह मूसा के साथ इज़राइल के लोगों को सभी शब्द परमेश्वर की ओर से उसे दिए गए सभी दबार सुनाने के लिए प्रकट हुआ। मूसा लोगों को चेतावनी देता है कि वे यहोवा की ओर से कहे गए इन सभी शब्दों को गंभीरता से लें। ये सभी शब्द संपूर्ण शिक्षा, जिसे हम व्यवस्था विवरण कहते हैं, को संदर्भित करते हैं, न कि केवल मूसा के गीत को। एक राष्ट्र के रूप में इज़राइल का अस्तित्व परमेश्वर के लोगों द्वारा इन निर्देशों और आज्ञाओं को सत्य के रूप में स्वीकार करने और फिर उनका पालन करने पर निर्भर करता है।
हम बाद के दिनों के विश्वासियों के लिए यह कितनी गंभीर चेतावनी है। उन लोगों के लिए एक चेतावनी जो अब आध्यात्मिक इज़राइल का हिस्सा है, व्यवस्था विवरण 32 की अंतिम दो पदों में अंतर्निहित है। मूसा लोगों से कहता है कि उसने उनसे जो कहा है वह तुच्छ या खोखला नहीं है। ये दाबर, ये शब्द आज्ञाओं शब्द के समानार्थी हैं। दाबर आज्ञाओं का पालन किया जाना चाहिए और उन्हें सुझावों या बारीकियों या विकल्पों तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। और चेतावनी यह है कि प्रभु पर भरोसा करना और उनकी आज्ञाओं का पालन करना ही जीवन है। याद रखें कि जीवन और आशीर्वाद व्यवस्था के सकारात्मक उद्देश्य हैं, जबकि मृत्यु और श्राप नकारात्मक हैं।
चर्च, हमने सदियों से ईश्वर की आज्ञाओं को तुच्छ समझा है और पिछले 100 सालों में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। हम इस बिंदु पर पहुंच गए हैं कि अक्सर यह सिखाया जाता है कि ईश्वर के नियमों का पालन करना वास्तव में एक बुरी बात है और हमने इसे व्यवस्थावाद का नकारात्मक अर्थ दिया है। कल्पना कीजिए, हम अपने सिद्धांतों और आदर्शों से इतने मोहित हो गए हैं, अपने व्यक्तित्व से इतना प्यार और अपने दिल की अच्छाई के प्रति इतना आश्वस्त कि प्रभु की लिखित आज्ञाओं का पालन करना मसीह के विरोध में माना जाता है। यहां प्रभु अपने मध्यस्थ मूसा के माध्यम से कहते हैं कि उनके नियम, उनका तोरा उनके लोगों के लिए जीवन है और कोई भी अन्य तरीका उनके लोगों के लिए डिफॉल्ट रूप से मृत्यु है। मैं मसीहा में अपने भाइयों और बहनों से कहता हूं, आप जो उसके लोग भी हैं, जीवन को चुने, इस चेतावनी पर ध्यान देना चुने, प्रभु के आज्ञाकारी बनना चुने। वास्तव में मूसा को यह पता चलने वाला है कि अब तक के दूसरे सबसे महान मध्यस्थ यीशुआ के बाद दूसरे के रूप में भी वह इस चेतावनी के अधीन है।
और इसका प्रमाण पद 48 में मिलता है, जब यहोवा मूसा को माउंट नेबो पर चढ़ने का निर्देश देता है और वहीं वह अपनी अंतिम सांस लेगा। ठीक उसी तरह जैसे हारून की मृत्यु माउंट नेबो के ऊपर 6 महीने पहले हुई थी, और इसी तरह मूसा भी माउंट नेबो पर मरेगा। ऊंचे स्थान पर मरने का बहुत महत्व है। ऊंचे स्थान, पर्वत शिखर और ऐसे ही अन्य स्थान प्राचीन लोगों द्वारा देवताओं का निवास स्थान माने जाते थे। जैसा कि मैंने आपको दिखाया है कि बाइबल में हमें दिया गया ईश्वर का सबसे पहला शीर्षक एल शद्दाई है, जिसका अर्थ है पर्वत का ईश्वर। यहां तक कि ईश्वर के लिए वह विशेषण जिसे हम सभी बहुत प्रिय मानते हैं, चट्टान इब्रानी में त्सुर का अर्थ पत्थर जैसा पत्थर नहीं है, इसका अर्थ है एक चट्टानी चट्टान जो घाटियों और मैदानों को देखती है जो इसके नीचे फैले हुए हैं। देवताओं की वेदियों को हमेशा उस क्षेत्र के सबसे ऊंचे भूगोल के शीर्ष पर रखा जाता था जहां लोग रहते थे। एक ऊंचे स्थान पर मरना और दफन होना ईश्वर के पास मरना और दफन होना है। परमेश्वर ने खुद मूसा को माउंट नेबो के ऊंचे स्थान पर आने के लिए बुलाया क्योंकि यह मोआब के क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी थी जहां अब इज़राइल डेरा डाले हुए था। इसने न केवल मूसा को वादा की गए देश का एक मनोरम दृश्य प्रदान किया जिसमें वह कभी प्रवेश नहीं करेगा, बल्कि परमेश्वर द्वारा पहाड़ की चोटी पर बुलाए जाने और उसके पास आने के लिए एक बड़ा सम्मान था। वचन 51 के अनुसार दोनों ही वादा किए गए देश में प्रवेश करने से पहले ही मर गए, जो प्रभु के साथ विश्वासघात का परिणाम था। यहूदी विद्वानों और रब्बियों ने 3000 वर्षों से परमेश्वर के विरुद्ध मूसा के अपराध की सटीक प्रकृति पर बहस की है। याद करें कि यह जंगल में उस समय से शुरू हुआ जब इसराइलियों को पानी की जरूरत थी और प्रभु ने हारून और मूसा को एक चट्टान से बात करने के लिए कहा जिससे पानी निकल आए। इसके बजाय मूसा ने लोगों से बात की और चट्टान पर प्रहार किया। यह गलत कार्य परमेश्वर की पवित्रता की पुष्टि करने में विफल रहा और इसका परिणाम इतना गंभीर था कि परमेश्वर के प्रथम मध्यस्थ मूसा और प्रथम महायाजक हारून भी अपने विश्राम के देश कनान में कभी प्रवेश नहीं कर सके। मुझे आश्चर्य है, क्या यह हो सकता है कि मूसा और उसके भाई के खिलाफ भयानक दंड का उद्देश्य यह था कि एकमात्र मानव मध्यस्थ जो परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के वादा किए गए देश में ले जा सकता था, उसे पूर्ण मध्यस्थ होना चाहिए था। शायद हमें यह देखना चाहिए कि उल्लंघन की सटीक प्रकृति पूरी तरह से महत्वहीन है, बल्कि यह है कि उल्लंघन था। वास्तव में जबकि औसत इसराइली या आज के हमारे लिए या यहां तक कि सबसे बेहतरीन धर्मशास्त्री दिमागों के लिए भी मूसा और हारून द्वारा किए गए उल्लंघन तुलनात्मक रूप से मामूली थे, इसीलिए परमेश्वर ऐसे महान लोगों को इतनी कठोर सजा देना आनुपातिक नहीं लगता। ऐसा लगता है कि यह कार्य परिणाम से मेल नहीं खाता।
मूसा एक बहुत ही खास व्यक्ति था। हालांकि महायाजक को अक्सर मध्यस्थ के रूप में संदर्भित किया जाता है और यहां तक कि कुछ लोगों ने यहोशू को इज़राइल के प्रतिस्थापन मध्यस्थ मूसा की जगह के रूप में देखा, वास्तव में मूसा इन दोनों से बहुत ऊपर था। न तो हारून और न ही यहोशू के पास मूसा की स्थिति के करीब कोई पद था। दोनों को कभी भी परमेश्वर से आमने सामने बात करने का विशेषाधिकार नहीं मिला। यहोशू को कभी भी महायाजक और मूसा की तरह परम पवित्र स्थान में जाने की अनुमति नहीं थी, और तब भी महायाजक केवल एक बार योम किप्पुर पर ही जा सकता था, जबकि मूसा नियमित रूप से वाचा के संदूक के सामने जाता था।
फिर भी मूसा के लिए परमेश्वर की अपेक्षा पूर्णता थी, और चूंकि मूसा मानव माता पिता का पुत्र था जो अपने साथ आदम के पतन के साथ आई दुष्ट प्रवृत्ति और पापी स्वभाव को लेकर आया था, इसलिए वह मानक को पूरा नहीं कर सका। चट्टान पर प्रहार करने का उल्लंघन पाप था। भले ही हम इसे सबसे छोटा पाप कहना चाहें, यह पाप था। यहां तक कि सबसे छोटा पाप भी मूसा को इज़राइल का उद्धारकर्ता होने से अयोग्य ठहराता था। इसलिए इसके बजाय 1300 साल तक प्रतीक्षा की गई, जब तक कि एक ऐसे व्यक्ति का जन्म नहीं हुआ जिसका कोई मानवीय पिता नहीं था, एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वरीय रूप से गर्भ में था और जो यहोवा के पूर्ण मध्यस्थ के मानक को पूरा कर सकता था। वह व्यक्ति यीशु था। वह इज़राइल का उद्धार करता हो सकता था क्योंकि उसने कुछ ऐसा किया जो मूसा नहीं कर सकता था। यीशु ने सबसे छोटा उल्लंघन भी नहीं किया, सबसे छोटा पाप भी नहीं। वह परिपूर्ण था। उसने व्यवस्था का पूरी तरह से पालन किया, ठीक उसी भावना से जिस भावना से उसका पालन किया जाना चाहिए था।
मूसा एक उदाहरण और आदर्श है कि अगर आज कोई भी जीवित व्यक्ति पूर्णता की उसी डिग्री को प्राप्त कर ले तो उसे विस्मय से देखा जाएगा, लेकिन यह भी परमेश्वर की न्याय व्यवस्था को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कोई भी व्यक्ति यह सोच सकता है कि हमारे हृदय इतने शुद्ध हैं कि हम परमेश्वर के सबसे छोटे से छोटे नियमों को भी बिना परिणाम के अनदेखा कर सकते हैं, भले ही हम छुटकारा पा चुके हैं, या कि हम इतने अच्छे और धर्मी हैं कि हमें अपनी अपूर्णता और पाप के लिए यीशु की आवश्यकता नहीं है, कि मनुष्य सृष्टिकर्ता के साथ टकराव के निश्चित मार्ग पर चल रहा है। अगले सप्ताह हम अध्याय 33 अर्थात इसराइल को मूसा का विदाई आशीर्वाद शुरू करेंगे।